स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट के सभी पार्लियामेंटेरियंस जो कि इन तूफानों को पार करके आज इस पार्लियामेंट के अंदर उपस्थित हैं, मैं आपका इस आज के टॉक शो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और थोड़ा सा ये तालियों का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि हमको बहुत एनर्जी गेन करनी है। साथ ही मैं आह्वान करता हूं हमारे आज के गाइड स्पीकर्स, मेरे सामने उपस्थित हैं हमारे भ्राता रामकृष्ण जी जो कि हैदराबाद से हमारे बीच पधारे हैं। रामकृष्ण भाई, हमारे बीच मुंबई से पधारे हैं भ्राता निकुंज, आपका भी मैं इस मंच पर आह्वान करता हूं। और ओडिशा से हमारे बीच पधारी हैं अंजना दास जी। अंजना दास जी जहां कहीं भी हो, वेलकम ब्रदर्स। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सबका स्वागत भाई साहब। और इससे पहले कि हम टॉक शो शुरू करें, मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि हमारे इस सत्र के वक्ताओं का पुष्प द्वारा और बैजेस के द्वारा स्वागत करें। आज के हमारे जो वक्तागण इस सत्र के अंदर उपस्थित हैं बहुत ही प्रतिभाओं के धनी हैं। और जैसा कि आज का हमारा जो थीम है, रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू वेलबींग, बहुत ही डाइवर्स पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग तरीके से अपने क्या कहें अपने बेनिफिशियरीज से इंटरेक्ट कर रहे हैं। निकुंज भाई इज बेसिकली फ्रॉम मीडिया बैकग्राउंड, बहुत ही छोटी आयु, मात्र 13 वर्ष की आयु में, जबकि आपके युवा काल की शुरुआत ही थी, तभी से आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। पिछले 34 वर्षों से आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आपने भारत का पहला आध्यात्मिक चैनल संस्कार का निर्माण करने में बहुत ही बहुमूल्य भूमिका निभाई है। और ब्रह्मा कुमारीज की कुछ प्रोमिनेंट वेबसाइट्स brahmakumaris.org.in, bksewa.org, यूट्यूब के अंदर एक आपका चैनल ब्रह्मा कुमारीज के नाम से, और आप एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। लगभग 7,500 से अधिक कॉलम्स आपने देश के विभिन्न न्यूज़पेपर्स के अंदर दिए हैं, आपको वर्ल्ड पीस मैसेंजर अवार्ड वर्ल्ड पीस कांग्रेस नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा 84 देशों से पधारे विभिन्न क्षेत्रों के विश्व नेताओं की उपस्थिति में दिया गया। आप यूनाइटेड राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फेलो मेंबरशिप भी आपको प्रदान की गई और वर्ष 2023 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन मेंटल हेल्थ अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ब्रह्मा कुमारी इसकी जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है उसके द्वारा गठित ग्लोबल इंटरैक्टिव मीडिया के अभिन्न अंग के रूप में आप देश और विदेश के बीच एक ब्रिज बनकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी इसकी जो मीडिया विंग है उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे सबसे लेफ्ट में बैठे हुए हैं भ्राता रामकृष्ण जी, आपका तो भाई साहब बायोडाटा इतना लंबा है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा शॉर्ट में आप सबको बता देना चाहूंगा कि ही इज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, अ मेडिटेटर, एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हु हैज क्वालिफाइड एमबीए, एमएस, एमफिल इन साइकोलॉजी एटसेट्रा। तो ही इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ मैनेजमेंट कोच बाय प्रोफेशन एंड अ मेडिटेटर बाय पैशन एंड बिलीव्स। अनेक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप सेवाएं देते हैं, अनेक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप एफिलिएटेड हैं, यूथ विंग के संस्थापक सदस्यों में से आप एक हैं। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की कई कैबिनेट एंड सब कैबिनेट कमिटीज के अंदर आप इनवाइटेड हैं। शांति सरोवर हैदराबाद के अंदर आप समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं एंड इन हिम वी फाइंड अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी गुड गाइड। तो ऐसे हमारे महानुभाव हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैं साथ ही इनवाइट करना चाहूंगा सिस्टर खुशबू। सिस्टर खुशबू भी आज की एक पैनलिस्ट में से एक हैं, तो वो भी अपना स्थान शीघ्र ही ग्रहण करेंगी। उनका भी मैं मंच पर आवाहन करता हूं। तो भाई साहब, जब बात आ रही है द रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड, और आप दोनों मैं समझता हूं कि अपने युवा काल से ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को थोड़ा सा अपने युवा काल के बारे में बताएं, क्योंकि जनरली युवा से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो अध्यात्म की तरफ जाए। हालांकि हमने इतिहास के अंदर बहुत पढ़ा है कि विवेकानंद जो थे वो अपने युवा काल से बने, जितने एमिनेंट साइंटिस्ट थे, जितने एमिनेंट प्लेयर्स बने वो अपने युवा काल के पुरुषार्थ पर बने, लेकिन आपके युवा काल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपका रुझान जो था बाकी तरफ ना जाकर अध्यात्म की तरफ थोड़ा अधिक हुआ, तो ये थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। तो पहले निकुंज भाई साहब, हाँ हिंदी में कहिए।
नमस्ते और ओम शांति सभी को। मैं समझता हूँ आपको मैं फ्रेंड्स कह के संबोधित कर सकता हूँ, इज इट ओके? दोस्तों फ्रेंड्स कह सकता हूँ आपको, जो समझते हैं ऐसे हाथ खड़ा कीजिए।
खुशबू को गॉडली गिफ्ट प्रदान किया जा रहा है और बैजेस भी दिया,
क्योंकि कोई भी बच्चे के लिए जब बचपन से लेके युवावस्था तक जब वो पहुंचता है तभी एक स्टैटिक चीज जो होती है हम सबके जीवन में कॉमन होता है वो है फ्रेंड्स। मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा। मैं 13 वर्ष की आयु में इस विश्वविद्यालय में आया और नास्तिक था, कोई भी मंदिर में कभी गया नहीं, कोई भी भगवान में कभी मानता नहीं था। तो यहां आकर के ही जैसे मेरे को स्पिरिचुअलिटी से ही शुरुआत हुई, तो 13 वर्ष की आयु से लेके मैं समझता हूँ 17-18 तक तो कुछ इतना समझ में नहीं आया, परंतु जो इन्होंने प्रश्न किया है कि स्पिरिचुअलिटी एंड यूथ, मैं समझता हूँ आज यदि हम देखें सीधे सीधे, यदि हम कहते हैं किसको कि आप स्पिरिचुअलिटी को समझिए या स्पिरिचुअल बनना चाहिए, तो आउटराइट वो चीज रिजेक्ट होती है, बराबर है ना? आपको कहेंगे आप स्पिरिचुअल आ रहे, ये क्या है, तो बात की देखेंगे, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि जो हमारी वेवलेंथ है ब्रेन की इस एज में, वो इन सब चीजों की तरफ रुझान कम ही रहता है। परंतु इन माई केस, व्हेनेवर आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझको 34 साल यहां पर हो गए, आई सस्टेन्ड हियर ओनली बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन। जो यहां हमारी दीदियों से, दादियों से, बहनों से निस्वार्थ प्रेम और स्नेह मिला, उस वजह से मैं यहां इतना वर्ष टिक गया। तो मैं कहूंगा ये कई बार ये बहुत धार्मिकता, आध्यात्मिकता, ये काफी भारी भरकम शब्द हो जाते, सुनते ही थोड़ा ये हो जाता, अरे नहीं 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 नहीं, इससे तो मैं ये कहूंगा कि मोर ऑफ फैमिली। आज जो भी मुझको मिलने आते यूथ, उनको हर एक को एक चीज की कमी बहुत खलती है, वो है प्यार। ऐसा प्यार जिसमें निस्वार्थपन हो, ऐसा प्यार जिसमें कुछ लेन देन नहीं हो। आज हमारे हर एक रिलेशनशिप जो है उसमें लेन देन हो गया, सौदेबाजी हो गया। तो मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी को बहुत बड़ा हम रूप न देते हुए, ये हमारी रोजमर्रा की जीवन में हम जो व्यवहार करते हैं उसी में आने वाली जो चीज है, उसी को मैं कहूंगा एक आध्यात्मिकता है। और प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, केवल इतना ही बात है कि उसको पता नहीं होता है कि मैं आध्यात्मिक हूं। यदि आपको ये बता दिया जाए कि देखो आप ये चीज कर रहे हैं, ये भी आध्यात्मिकता का भी एक हिस्सा है। दो दोस्त आपस में होते हैं, एक दूसरे को जो मदद करते हैं अनकंडीशनली, एक प्रकार से एक सबकॉन्शियसली आध्यात्मिकता का ही हिस्सा है। तो इसीलिए मैं समझता हूं यूथ के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि आपके ऊपर अब तक संसार की इतनी कोई जिम्मेवारियों का बोझ नहीं आया है। एक बार आप संसार की शादी वगैरह करके पारिवारिक जीवन में आते तो थोड़ा वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हाल फिलहाल आप फ्री बर्ड हो, तो आपके लिए खुले आकाश में उड़ना और लाइफ एंजॉय करना ये आसान है, बट विथ ए पिंच ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऐसा मेरा मानना है।
रामकृष्ण भाई, फ्रॉम योर एंड।
धन्यवाद रोहित भाई। ओम शांति। मेरे ख्याल से युवा काल का जो अवस्था होता है वो बेसिकली बहुत ही स्पिरिचुअल होता है। फंडामेंटली युवा काल एक ऐसी स्टेज है जहां एजुकेशन के डिफरेंट फेजेस को कंप्लीट करके पहुंचते हैं। कॉलेज एजुकेशन, वो स्टेज में हम युवा काल कहते हैं। उस समय कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, कई प्रकार के प्रश्न, जैसे जैसे सोसाइटी को एक्सपोज होते हैं, जैसे रिलीजियंस का एक्सपोजर मिलता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री का मिलता है, कई प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। उस क्वेश्चन से ही स्पिरिचुअलिटी जागृत हो जाती है। मेरा छोटा सा अनुभव यह रहा कि बचपन से पेरेंट्स के साथ कई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के कनेक्शन में आ रहे थे, और साथ साथ कई संस्थाओं में जाना और वहां की फिलॉसफी को समझना, बहुत यंग एज में ही एक अपॉर्चुनिटी मिला भगवद गीता को अच्छी तरह से पढ़ने का, और साथ साथ कुरान को भी पढ़ने का, बाइबल को भी पढ़ने का, धर्मपद को भी पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिला था। इन सब के पीछे कुछ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे दिख रहा था, और वो कनेक्शन क्या है उसका खोज माइंड मन ढूंढ रहा था। उसी समय एक आदर्श सोसाइटी किस प्रकार के हो सकती है उसके बारे में पढ़ रहा था, तो कम्युनिस्टिक लाइफस्टाइल और फिलॉसफी बहुत ही रेशनल और बहुत ही आइडियलिस्टिक लगा। मगर जब अपॉर्चुनिटी मिली कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आने का, मैंने उस समय एक बहुत ही अलौकिक और दिव्य अनुभूति का एक्सपीरियंस किया। उस समय वहां की रीजन से 1,500 भाई बहनें सब इकट्ठे हुए, एक जगह एक ही स्तर पर सभी बैठे हुए एक 4-5 घंटे साधना में, हवस साधना में बिता रहे थे। मैंने एक ऑब्जर्व किया, सभी में एक प्रकार की रूहानियत है, और सभी जैसे निकुंज भाई अभी कह रहे थे, वहां जो भी बैठे हों उसके बगल में उनका रिलीजियन क्या है, उनका कास्ट क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, या उनका एजुकेशन क्या है, इसका कोई परिचय किसी को नहीं था। मगर हर एक के व्यवहार में बहुत सा प्यार था, बहुत सा स्नेह था, बहुत हाई लेवल ऑफ रेस्पेक्ट था। एक 90 इयर्स एज्ड पर्सन भी एक छोटा सा बच्चे को बहुत प्यार से भाई कह के, बहन कह के संबोधित कर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह स्पिरिचुअलिटी यहां पर बहुत प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है, और थोड़ा यंग एज में साइंटिफिक टेंपर भी बहुत होता है। फिर मैंने इस फिलॉसफी को स्टडी किया, मैंने एक मन में एक संकल्प लिया कि जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, सिर्फ मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा, मुझे कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है। जब एक्सपीरियंस होगा तो मैं फॉलो करूंगा, ऐसे सोच के बैठा था। कुछ समय के बाद क्वेश्चंस का, इंक्वायरी का माध्यम यूज किया, उसके बाद में मुझे समझ में आया सिर्फ क्वेश्चन से आप आंसर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आपको सरेंडर होना होगा। कोई भी साधना करनी है तो अपने आप को उस साधना के लिए कमिट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, तब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे साइंस में भी एक हाइपोथेसिस को आधार लेके एक रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करता है, तब कुछ अचीव कर सकता है या प्रूव करेगा डिसप्रूव करेगा। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को भी मैंने उस प्रकार से लिया, जब मैंने अपने मन से सरेंडर किया, अपने आप को समर्पित किया उस प्रोसेस के लिए, कुछ बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, और वो एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ाते चले। थैंक यू।
थैंक यू सो मच रामकृष्ण भाई। एंड अभी मैं इनवाइट कर रहा हूं अर्चना दास जी। अर्चना दास जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो आई वुड लाइक टू एडिशनली इंट्रोड्यूस डॉक्टर खुशबू कपूर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए कितनी डाइवर्स ये पैनल है, टू ब्रदर्स हु आर एंटायरली इनटू स्पिरिचुअलिटी, एंड कैन यू गेस व्हाट आवर रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सिस्टर्स आर डूइंग। डॉक्टर खुशबू कपूर इज द टॉप मोस्ट इंडियन फीमेल डीजे एंड एमसी मेकिंग इंडिया प्राउड। लेट्स वेलकम हर विद अ बिग अप्लॉज। हां, आप ही के लिए मैं कह रहा हूं। नो नो, शी वॉज जस्ट बींग वेलकम विद अ बैच। So as a lady architect of Bollywood Indian music, or the Indian Shakira, or the one who added a fanfare to the Champions League 2020 one day international cricket tournament and IPL official events, DJ and anchor Khushbu Kapoor is the most acclaimed, loved, preferred and adored music woman and public speaker in the field. Several notches above her equivalents, she is rapidly becoming the face of DJing and anchoring business. She has recently performed for a concert with an audience comprising of 30,000 people and she made them dance to her tunes at Reliance Greens, Jamnagar, Gujarat. The concert was attended by Srimati Kokila Ben Ambani, mother of Mukesh Ambani and Anil Ambani. A class apart DJ and MC Khushbu Kapoor is the female face of Indian music and event industry. She has represented India abroad during her concerts and events at Doha, Taiwan, Abu Dhabi, Istanbul, Dubai and several other countries. So, bahut lamba choda aapka hai. She has also been a TV anchor and she has been following her social media. There's a following on her social media platforms is the reflection of her immense popularity across the globe. So let's welcome Dr. Khushbu Kapoor. And on our extreme left, we have Anjana Dasji, a veteran actress of Odia film and television industry. Anjana Dash is very popular and well known for her work in the Odia film industry, and she made her debut on silver screen with the film Yashoda India in the year 1996. So she was having an aspiration of becoming a police officer, but the destiny had its own way. She became something which no one have ever expected or she would have herself never dreamed of. Today she is one of the top-notch actresses on the Odia film and TV industry. She touched the pinnacle of her own field within a very short spell and achieved the success. She acted in both big and small screen and put herself on the top of the industry by delivering her heart-touching acting. She gained popularity in the film industry among the movie lovers, which cannot be easily described in words. And in the year 1995, she was conferred with a fellowship by Ministry of Culture, Government of India. And she also contributed to famous songs as a playback singer in the Odia film Bastra Haran, directed by veteran director Shishir Mishra. So let's welcome Sister Anjana Dash as well. So I think all of us have been following very diverse kind of journeys. And aapke yuva kal ke andar bhi, aap apne yuva kal ko kaise dekhte hain? Main aap dono se hi anurodh karunga ki thode thoda hamare saath sharing karein ki aapka yuva kal aur aapke andar jo creative energies jagi wo kis prakar se jagi, thoda aaj hamari audience ke saath share karein.
पहले मैं परमात्मा को धन्यवाद करूंगी और कोटि-कोटि प्रणाम कि वो मुझे इस मंच की योग्य समझे. फिर भगवान की फुलवारियों को, भगवान की फुलवारी का इस सभी गुलाबों को मेरा नमस्कार. हम सभी चाहते हैं कुछ करके दिखाने को, ऐसा कुछ करें कि हमको दुनिया याद रखे और बहुत प्यार करे, है ना? ये जुनून मेरे पर भी चढ़ा था और 1995 में मैं खुद पड़ी कुछ करके दिखाने को. हमारा ये जो लाइफस्टाइल है हमारा, बहुत टेंशन, बहुत यानी कि जो हेक्टिक शेड्यूल रहता है, हम थोड़ा बहुत माने डिप्रेशन भी बहुत बढ़ जाता है. लेकिन इसी डिप्रेशन में, इसी टेंशन में हमारा लाइफ चलता ही रहता है और हम तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए हमको पैसा मिलता है. लेकिन दुनिया, दुनिया आर्टिस्ट लोगों को आइडियल बना के क्या पता है, वो हीरो ऐसा पहना, मुझे भी ऐसा चाहिए, वो हीरोइन ऐसा पहनी थी, मुझे भी ऐसा पहनना चाहिए। ऐसे करके करके हम दूसरों को देखते देखते हम अपने को ही भूल जाते हैं। ये जर्नी मेरे मन में थकान भी लाया था और डिप्रेशन भी लाया था। इसी दौरान मैं किसी के बोलने पर ब्रह्मा कुमारी में पहुंची। उधर जाके मेरा मुझे पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा, मुझे मेरा टेंशन था, मेरा डिप्रेशन था और सोच बोल व्यवहार सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पता नहीं कैसे और मेडिटेशन के पावर में मेरा धीरे धीरे पॉजिटिविटी मन में इतना बढ़ने लगा कि मैं सोचने लगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। पॉजिटिविटी 100% बढ़ने लगा। और आज मैं 12 साल से मैं इसी संस्था के साथ जुड़ी भी हूँ और मेरे प्रोफेशन में काम भी करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हमारा टॉपिक है बेटर वर्ल्ड के लिए, हम युवाओं का सोच ही बदलना चाहिए। हमारा थॉट अगर बदल जाए तो दुनिया भी बेटर हो जाएगा, है ना? थैंक यू।
खुशबू जी,
ओम शांति। सो आज यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमारीज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उन्होंने ये मौका दिया मुझे एक बार फिर से इस बहुत ही पवित्र धरा पर आने का। तो मैं चाहूंगी आप सभी लोग एक बार ब्रह्म कुमारीज के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ये मौका हम सभी को मिला है। यहाँ पर हमारे सभी माननीय मेरे कलीग्स जो मेरे साथ स्टेज पर हैं, और आप सभी का तहे दिल से मैं खुशबू कपूर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे ब्रदर ने हमसे सवाल किया कि स्पिरिचुअलिटी का हमारी क्रिएटिव एनर्जीज पर क्या इफेक्ट पड़ा, राइट, युवा काल के दौरान?
या आपकी यंग एज में स्पेशली।
स्पेशली, ओके। सो स्पिरिचुअलिटी के साथ मेरा सबसे पहले जो एक फैमिलैरिटी हुई वो हुई जब मैं 12 साल की थी। सो 12 इयर्स की जब मैं थी, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, और मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में इस बात को अनुभव किया, क्योंकि मुझे मेरे आंसर्स चाहिए थे। जब मुझे नहीं पता कि मुझे वो अनुभव शेयर करना चाहिए, बट मुझे 12 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार हुआ था। और वो होता है कि जब आपको अंदर का ज्ञान हो जाता है, जब आप अपनी आत्मा से परिचित हो जाते हैं, जब आप एक आत्म उन्नति की राह पर चलने लगते हैं, क्रिएटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा उन्नत हुई। मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। लाइफ में से स्ट्रेस वो सब तो गायब होना ही था, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो आपका मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इस सब चीज़ अपने आप बैलेंस हो जाती है। आज की अगर दुनिया में देखें तो सक्सेस के मायने बहुत बदल चुके हैं। लोगों के लिए सक्सेस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तक ही लिमिटेड है। लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा धन दौलत होना ही सक्सेसफुल होता है, जबकि मुझे लगता है कि जब आप एथिकली कोई काम करते हैं, अपने मॉरल्स के साथ कोई काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तब वो एक असली सक्सेस होती है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं अगर वो दूसरे के काम आए तो तो उसी में ही हमारा असली सफलता है। अगर मैं बात करूं मेरे बचपन से लेकर अभी तक, तो जो बदलाव मैंने मेरी जिंदगी में देखा ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करने के बाद, वो ये था कि मैंने अब टेंशन लेना छोड़ दिया था। मुझे पता है कि मैं जो भी करूंगी उसका रखवालन है मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। वो जब एक थॉट आ गया था मेरे मन में कि मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया है और अब जो कंट्रोल है वो सुप्रीम पावर के हाथ में है और वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। तो ये सब तभी हो पाता है जब आपके अंदर आत्मिक शक्ति बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी से डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत ही फास्ट और बहुत ही सुदृढ़ हुई मेरे अंदर। और मुझे लगता है जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, स्पेशली जब आप यंग होते हैं, जब आप स्कूल एज में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो आपके लिए लॉन्ग लाइफ वो आपको हेल्पफुल करता है। डिसीजन मेकिंग पावर जब अच्छी हो जाती है तो आपकी हैबिट्स जो कि आपके संस्कार होते हैं वो मजबूत होते हैं। हम डिसिप्लिन्ड लाइफ को डेवलप करते हैं और जो भी काम करते हैं उसमें सफलता निश्चित ही है। सो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप भी ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन करें या फिर जिसमें आपका विश्वास है, जिस स्पिरिचुअल सुप्रीम पावर को आप मानते हैं उसमें ज्वाइन करें और सक्सेस के साथ साथ काइंडनेस, हम्बलनेस, ये सारी क्वालिटीज भी आपके अंदर खुद ही आ जाएंगी, अच्छे संस्कार आप डेवलप कर पाएंगे। सो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरे ब्रह्म कुमारी के ज्वाइन करने के बाद और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सिस्टर। तो आपने देखा हर एक ने किस किस तरीके से राजयोग सीखा, उसका अभ्यास किया और उनके जीवन के अंदर अलग अलग तरह के परिवर्तन आए और अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे रीति आपने एक्सेल किया है। अभी हम इस टॉपिक शो के दूसरे विषय पर आ जाते हैं जिसके लिए कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, दैट इज वेलबींग। वेलबींग के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि वेलबींग आज के समय के अंदर, जब हम जानते हैं कि हम लोग बहुत टाइट डेडलाइंस के साथ काम कर रहे हैं, लाइफ के अंदर बहुत तरह के स्ट्रेसेस हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक पीयर प्रेशर, देर इज वर्क प्रेशर, देर इज फैमिली प्रेशर, जब इतनी सारी चीजें हैं, सो हाउ डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू नर्चर योर ओन वेलबींग? तो रामकृष्ण भाई, आई थिंक यू इज द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट फॉर दिस।
थैंक यू रोहित भाई। जब हम ये शब्द यूज करते हैं वेलबींग, इसकी गहराई से समझने की कोशिश करें। वेलबींग माना जो बींग है, ओके, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वेलनेस और वेलबींग दो शब्द है। वेलनेस फिजिकल बॉडी के साथ रिलेट करती है और वेलबींग अपनी मन, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे कोर वैल्यूज और हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। जब वेलबींग है तो वेलनेस ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। क्रिएटिंग ए बेटर वर्ल्ड, एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेटर पर्सन को क्रिएट करना होगा। वो बेटर, फर्स्ट बेस्टर पर्सन इस दुनिया में कौन बने? वो खुद ही बने। इसके लिए एक इनर हार्मनी की जरूरत होती है, वो ड्यूअलिटी मिनिमाइज होते हुए एक प्रकार से व्यक्ति अपने आप से बहुत कंफर्टेबल फील करे, अपने आप अपने कोर से जुड़ पाए और एक अच्छा सेल्फ रिलेशनशिप डेवलप हो खुद से, जहां हमारे फीलिंग्स में, हमारे एक्सप्रेशंस में, हमारे थॉट्स में एक प्रकार की इंटीग्रिटी डेवलप हो। वो वेलबींग की बेसिक फाउंडेशन हो जाता है। हमारे सोच को, हमारे थॉट्स को अच्छी तरह से समझ सके, हमारे फीलिंग्स को समझ सके, हमारे क्वेश्चंस को के साथ हम अच्छी तरह से एक खोज क्रिएट कर सके, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके, एक एक्सप्लोरेटिव माइंडसेट को डेवलप करें, ये वेलबींग के कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स है। जैसे व्यक्ति अपने वेलबींग के ऊपर वर्क करता है, एक बहुत सूदिंग इनर हार्मनी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। ये स्पिरिचुअलिटी में जाने से पहले भी यहां से शुरू होना चाहिए व्यक्ति को, तब एक प्रकार की एक्सटर्नल थिंग्स को हार्मोनाइज करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। जब मन स्थिर हो जाता है, अपनी फीलिंग्स और इमोशन स्टेबल हो जाते हैं, अपनी अंतर चेतना की आवाज हम सुन पाते हैं, वो एक बहुत हार्मोनियस एंड सूदिंग एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी के लिए जो फाउंडेशन होना चाहिए वो स्टार्ट हो जाती है।
निकुंज भाई साहब, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू फील कि आज के समय के अंदर इतने प्रेशर्स को झेलते हुए हम अपनी वेलबींग को किस तरह से सस्टेन करें?
देखिए, मैंने एज ऑफ रिबेलियन इस विषय पे एक कॉलम लिखा था, उसको वास्तव में यूएन की तरफ से वो मेरा कॉलम सिलेक्ट भी हुआ था कि अधिकांश जो भी युवा है, ये जो एज है 13 से लेके 21 तक टू बी प्रिसाइज, ये काफी रिबेलियस एज होती है। अर्थात इसमें जोश बहुत होता है और होश खोने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, और हम सब इससे गुजरे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं वेलबींग को, इफ आई वुड पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, कि आप कितना स्टेबल हो, दैट वुड डिफाइन हाउ वेल यू आर। तो आज मैं देखता हूं कि मुझे कई जगह बुलाते टॉक्स देने के लिए, अनस्टेबिलिटी बहुत है, आप सभी मानते हैं, माइंड में अनस्टेबिलिटी बहुत है। सच सच है तो बताइए। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स में ऊंच नीचे, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है उसको मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब हम इतना जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं आते थे। मैं समझता हूं आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, पर आज आप जो हो, आप लोग बड़े फास्ट हो इन और आउट होने में। ठीक कह रहा हूं भाई? हाथ खड़ा कर दीजिए, मुझे मालूम है, सच सच हाथ खड़ा कीजिए। महीने में दो रिलेशनशिप, तीन रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं, तो स्विच ओवर बहुत होता है। उस वजह से क्या होता है कि लेफ्ट ओवर जो फीलिंग्स है, जो हर्ट है, वो जो बर्डन और बैगेज है, वो हम लोग बहुत कैरी करके नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते तो बर्डन के साथ, वो फियर के साथ, अभी ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इन सब की वजह से ओवर एंड ऑल वेलबींग में काफी गिरावट आई है। जिस वजह से द इजिएस्ट वे फॉर एनी यूथ इज टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, और वो इजिएस्ट एडिक्शन है या तो सिगरेट की लत पे लग जाएंगे, या ड्रग्स की लत पे लग जाएंगे, या कोई और लत में लग जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है भुलाने का कैसे। ये चीज धक्का लग गया दिल को, उसको उसमें से बाहर कैसे आने का, तो थोड़े टाइम के लिए उसको भुलाने के लिए हम किसी न किसी एडिक्शन का सहारा लेते हैं। इसीलिए आप अमूमन किसी भी व्यक्ति को पूछना, हाउ डिड यू लर्न टू स्मोक, किसी को भी पूछना इस दुनिया में, संसार का कोई भी हो, बोलेगा मेरे दोस्त ने मेरे को एक बार बोला था ट्राई कर ले। राइट या रॉन्ग, हाथ खड़ा कीजिए। अरे अपने ही सब, कोई आपको, आपके मम्मी पापा को बोलेगा नहीं कोई, हाथ खड़ा कीजिए। राइट और रॉन्ग, दोस्त ने बोला इसीलिए किया, खुद नहीं करते, समवन हैज टू से। तो मैं समझता हूं कि स्टेबिलिटी इज मस्ट, एंड दैट स्टेबिलिटी वुड कम विथ अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग क्या, आई वुड पुट इट सिंपली, मैं साधारण सिंपल भाषा में कहता हूं, मैं रस्ते पे चल रहा हूं, मुझको मालूम है उधर खड्डा है, आप में से कोई भी खड्डे में गिरेगा क्या? हाँ या ना? अरे बोलो जोर से, हाँ या ना? नहीं, मालूम है अपने को खड्डे में नहीं गिरने का। ये समझ आप हर एक को होना चाहिए। दैट इज वाई आई टेल एवरी यंगस्टर्स, देखो तुम्हारे आगे लंबी जिंदगी है, रिलेशनशिप में पड़ने का बहुत जल्दी मत करो, क्योंकि बाहर निकलने का भी तकलीफ है, वापस अंदर जाना तकलीफ, वापस बाहर। तो इसीलिए टेक योर ओन टाइम, पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई कीजिए, आगे बहुत सारी समय है आपके पास। तो फॉर मी वेल बीइंग इज स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, स्पेशली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स।
थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन भाई साहब। अब इसके थ्योरी से थोड़े से प्रैक्टिकल पहलू की ओर हम लोग शिफ्ट करते हैं। अंजना दास जी से मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि वेल बीइंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आज के समय में विशेष यदि आपने कोई साधन अपनाया है तो थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में आप बताएं। आपको किस तरीके के चैलेंजेस थे और आपको अपनी वेलबींग को प्रिजर्व करने के लिए आपने क्या साधन अपनाया?
अपनी एक्सपीरियंस से मैं कहूंगी कि मैं जो दुनिया में अभी जीती हूं वहां क्या बताऊं, आप सब जानते हैं ना, है ना? आजकल के दुनिया में बारे में कोई को मालूम नहीं है। अजीब सा दुनिया है, एकदम अजीब सा दुनिया है, क्योंकि वो दुनिया में टेंशन, डिप्रेशन और ये होता है सिर्फ आउटर वर्ल्ड में रहने के लिए। इसका कारण है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड क्या है? दूसरों को देखना और ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, मोबाइल, गंदे गंदे वीडियोस देखना, रिलेशनशिप में रहना, इस सब बहुत ज्यादा आज युवाओं को नीचे गिरा देता है। मैं भी उस दुनिया में जीती हूं और वहां से अपने आप को निकाल कर वो मेडिटेशन के वजह से मेरा सोच, मेरा भावना, अपनी शक्ति को, आत्मिक शक्ति को जागृत किया। तो मैं भी चाहूंगी आजकल के युवाएं जरूर कर पाएंगे। अपने आप अंदर को देखिए, दूसरों को मत देखिए, थोड़ा तो अपने बारे में सोचिए ना। इस जिंदगी बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही वैल्यूबल। एक ही जिंदगी, एक एक दिन जाता है तो वो वापस नहीं आता है। तो देखिए, जो गया बीत गया, फर्स्ट स्टेप, आगे बढ़िए, अपने आप को जागृत कीजिए, अपने आप में कितनी शक्ति है, हो जाएगा। अपनी सोच से ही दुनिया बदल जाएगा। वो वाइब्रेशन जो निकलेगा ना, धीरे 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 अपने आप को परिवर्तन भी करेगा और दुनिया को भी परिवर्तन करेगा। थैंक यू। ओम शांति।
सेम क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपके फील्ड के चैलेंजेस क्या हैं, आपकी वेलबींग को किस तरह से इंपैक्ट करते हैं और आप उसको सस्टेन करने के लिए वर्तमान समय क्या कर रहे हैं?
मुझे लगता है कि हर किसी की फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय आर पॉजिटिव थिंकिंग। जैसा हम सोचते हैं दुनिया भी हमारे बारे में वैसा ही सोचते हैं। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें किसी से परमिशन लेनी है, लेकिन हमारे मन में ये थॉट चल रहा है कि क्या पता परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप देख लीजिएगा कि आप जब उनसे परमिशन लेने जाएंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। सो ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव थिंकिंग का। मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं। वी राइट आर ओन डेस्टिनी, कोई दूसरा हमारी लाइफ की डेस्टिनी, हमारी लाइफ की जर्नी डिसाइड नहीं करता, बल्कि हम खुद करते हैं। ये हम करते हैं अपने विचारों से, हमारे कर्मों से, क्योंकि लाइफ एक ही है और हमें इसी लाइफ में सब कुछ करना है। मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है और उसकी लाइन मुझे लगता है आप सभी को पता होंगी, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो जब हमारे मन में ये एक लाइन फिट हो जाती है ना कि हमारा आज का यही पल है, इसी को हमें बेस्ट करना है, इसी में हमें अपना 100% देना है, इसी में हमें डिसिप्लिन के साथ जीना है, तो अपने आप ही लाइफ अच्छी हो जाती है। मैंने लाइफ में सेल्फ कंट्रोल को लेकर बहुत कुछ सीखा है। कई बार ऐसा होता है कि हम अलार्म तो लगा देते हैं सुबह 4 बजे का, लेकिन बार बार उसको स्नूज करते रहते हैं, बार बार सोचते हैं अभी तो टाइम है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, थोड़ा और सो लेते हैं। होता है आपके साथ ऐसा? रेज योर हैंड्स अप। होता ही है। लेकिन जब हमें इस चीज को ओवरकम करना आ जाता है तो लाइफ अपने आप इजी और डिसिप्लिन्ड हो जाती है। और मुझे लगता है बेटर वर्ल्ड, जैसे इसमें लिखा है हमारे आज के टॉपिक में, हाउ यूथ कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड थ्रू वेल बींग। सो मुझे लगता है कि शुरुआत खुद से होती है। लाखों करोड़ों लोगों को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हर एक व्यक्ति खुद में चेंज लाए तो दुनिया अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। एक व्यक्ति ने एक बार सोचा कि मैं गंगा नदी को साफ करता हूं। क्या एक अकेला व्यक्ति गंगा नदी को साफ कर सकता है? नहीं। क्या वो बहुत सारे करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर सकता है गंगा नदी को साफ करने के लिए? थोड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर बहु व्यक्ति गंगा नदी में कूड़ा डालना बंद कर दे, उसे गंदा करना बंद कर दे, और ऐसी सोच हर एक व्यक्ति की हो जाए, तो हमारी पावन गंगा नदी हमेशा साफ रहेगी। सो स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। शुरुआत आप खुद से करें, दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और ये बेटर वर्ल्ड हम ही लोग बनाने वाले हैं। ओम शांति।
ये बहुत अच्छी बात निकल करके आ रही है कि चेंज तो हमें अपने आप से ही लाना है। लेकिन रामकृष्ण भाई, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज की दुनिया के अंदर चैलेंजेस तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और जब हम युवा पीढ़ी को देखते हैं तो अक्सर करके ये देखने में आता है कि फेलियर्स को फेस करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, और जब कोई फेलियर फेस नहीं कर पाता है दे रिजॉर्ट टू सम एक्सट्रीम थिंग्स लाइक सुइसाइड। तो ऐसे समय पर हम लोग की क्या जिम्मेदारी बनती है, और ऐसों की वेलबींग को रिस्टोर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा आप अपने अनुभव से हमारे साथ शेयर करें।
एक बहुत सेंसिटिव प्रश्न है ये। एक सुसाइडल टेंडेंसी कब शुरू होती है? ये जो फाइटिंग स्पिरिट होता है हर व्यक्ति के अंदर, जब वो फाइटिंग स्पिरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तब इसकी संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात, एक प्रकार की डेफिनेशन है, एक बिलीफ सिस्टम है कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में जीतना है। एक बहुत ही रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है ये। ओके, दो व्यक्ति कुछ खेल रहे हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। ये जीतेगा हारे के बजाय हम ये कहे एक जीतेगा और दूसरा सीखेगा। फेल्यूर सीखने की एक अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइफ में, स्पेशली यूथ को, फेल्यूर्स को रेस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। और जब हम फेल्यूर से गुजरते हैं खुद को रेस्पेक्ट करना बहुत सीखना चाहिए। हर फेल्यूर में हम ग्रो होते हैं। एक बार आप सोचिए, लाइफ में फेल्यूर्स भी है और सक्सेस भी है, हम जिंदगी में सीखे कहां है, सक्सेस में सीखे हैं या फेल्यूर में सीखे। और दूसरी बात है, अपने आप को पहचाने कब, हम प्रश्न कब पूछे हैं कि यह सक्सेस क्या, यह सक्सेस में कौन है कंट्रीब्यूटर या किस प्रकार की कारण से मैंने यह सक्सेस पाया। हम सेलिब्रेट करते हैं, सक्सेस में खोजते नहीं है, मगर फेल्यूर में हम रुकते हैं, अपने आप से बात करते हैं, हम सारी चीज को देखते हैं, हर व्यक्ति को परखते हैं। हर परिस्थिति में जब भी हम यह फेल्यूर को टेस्ट करते हैं, उस समय हम हमारे लिमिटेशन से, एक लिमिटेशन से दूसरे लिमिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में फेल्यूर्स को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ देखना जरूरी है, और जो भी इंसान फेल हुआ है हमारे आसपास में, उसको बहुत रेस्पेक्ट से, इज्जत से उसके साथ पेश करना बहुत जरूरी है। उसकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए, उसकी वीकनेस या उसको कमजोर नहीं करना चाहिए जो भी हम फेल्यूर। और एक बात, जब हम फेल्यूर होते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है और मित्र जैसा बिहेव करने वाला कौन है। ओके? जब फेल्यूर्स होते हैं तो हमें लोगों की परख मिल जाती है, अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है, लाइफ की रियलिटी समझ में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेल्यूर्स को रिस्पेक्ट करें। और दूसरी चीज, हमारे अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी है। ओके? हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति स्पेशल है, हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भल कोई हाइट है, कोई लो है, कोई ब्यूटीफुल है, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द पर्सन हु लुक्स एट इट। ओके? हर माँ के लिए हर बच्चा अपना ब्यूटीफुल है, और हर व्यक्ति की एक इनर ब्यूटी है। परमात्मा किसी को भी वंचित नहीं किया है। हर व्यक्ति में कुछ खूबी है, कुछ स्पेशलिटीज है, कुछ क्वालिटीज है, कुछ पावर्स है, और कुछ आर्ट्स भी है। हाँ, प्रॉब्लम यहां होता है कि हम हमारे अंदर छुपी हुई उस चीज को पहचान नहीं पाते हैं और दूसरों का पहचानना शुरू कर देते हैं। इजीली वी अंडरस्टैंड अदर पीपल स्पेशलिटीज बट डोंट अंडरस्टैंड अवर ओन स्पेशलिटी। थोड़ा हम हमारे लेंस का डायरेक्शन को शिफ्ट करें। इनर हमारे अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटीज है उसे पहचानने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आप में एक कलाकार है, यू हैव एन आर्टिस्ट और यू हैव एन ए सिंगर। आपने ट्राई किया, सब लोगों ने हंसा, तब से सिंग करना बंद कर दिया। रिवर्क कीजिए अपने आप पे, कुछ तो ऐसे स्पेशलिटीज है आपके अंदर। जब आप अंदर झांकना शुरू करते, वो क्वालिटीज को आप जितना अर्ली पहचानोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे। आपको जीने का पूरा अधिकार है, हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति का एक टाइम है जहां वो विश्व में एक बहुत रेडिकल चेंज या कैटलिस्टिक चेंज लाने के लिए हर व्यक्ति निमित्त होता है अपने एनवायरमेंट में। उस टाइम के लिए थोड़ा वेट कीजिए। इतना जल्दी क्विकली एक लाइफ को डिजास्टर की ओर ले जाने की थॉट्स जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फ का जो रेस्पेक्ट है वो थोड़ा कम हो गया है, सेल्फ के ऊपर जो विश्वास है वो थोड़ा कम हो गया है, सेल्फ का पहचान जो है वो कोई कम हो गया। उसके ऊपर जब हम वर्क करेंगे एक लॉट ऑफ लव के साथ, बहुत ही एक प्रकार के सपोर्टिव फीलिंग के साथ, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप अपने साथ हो, आप अकेले भी हो, आप सक्सेस को पाओगे जरूर। आप अपनी जो पर्पस है उसको जरूर अचीव करोगे। ये सेल्फ मोटिवेटेड थॉट्स, आपकी जो फीलिंग्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, अपना मन ही अपना शत्रु बन रहा है, उस मन को प्यार से अपनी तरफ ले आइए, बात कीजिए, उसकी रेस्पेक्ट को बढ़ाइए, उसकी फीलिंग्स को बढ़ाइए। बचपन से लेकर आज दिन तक जहां भी आपने सक्सेस पाया उन सारे सक्सेस को याद कीजिए। बचपन से अब तक कौन से जो क्वालिटीज आप अपने आपको ऑब्जर्व किया वो सारे क्वालिटीज को लिखिए। अपना मोटिवेशन फिर बढ़ाइए, स्टैंड अप स्ट्रांग ऑन टू योर सेल्फ। या सुसाइडल टेंडेंसीज तो वॉश आउट हो जाएंगे और एक नया पर्पज और नई दिशा आपको दिखने में आ जाएगा।
थैंक यू सो मच भाई साहब। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। निकुंज भाई साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत करके यूथ ऐसे हैं जो कि अपनी क्वालिटीज से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अपनी क्वालिटीज से अवेयर होने के लिए और उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हम किस तरह की नई पहल कर सकते हैं? थोड़ा सा इस विषय पर आप प्रकाश डालें।
देखिए, ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा जिसके अंदर एक विशेषता नहीं है। अमूमन होता क्या है कि चूंकि हम लोगों को अभी आंख सामने है, तो जो सामने दिखता है उसके साथ हम खुद को कंपेयर करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि बचपन से लेके हम में से ऐसा कोई होगा जिसने खुद का पहना हुआ कपड़ा से खुश हुआ रहेगा। कोई है ऐसे है क्या? उसका कितना अच्छा है कलर, बोलिए, अनुभव है ऐसे? जिसको एक्सपीरियंस हो हाथ खड़ा करो। मेरे को है, मैं बता रहा है भाई, वो मेरे भाई का अच्छा है, मेरे फ्रेंड का अच्छा है, खुद का जो है उसमें हमको कुछ ना कुछ ऐसा लगता ही कि मेरा ये कलर अच्छा नहीं है। या तो देखें, मेरा हाइट कम है, उसका हाइट कितना अच्छा है, मेरा फेस ऐसा नहीं है, उसका कितना अच्छा है। तो हम लोगों को कुछ घर में ही माता पिता के द्वारा ये कंपैरिजन का है कि अंदर घुसा दिया जाता है, कि वो आदत कि देख उसने कितना लाया मार्क्स, उसका देखो कितना है, उसका बच्चा देखो, उसका बेटा देखो, बेटी देखो। तो हमारा बुद्धि में ये एक पहले से फिट हो जाता कि मेरे अंदर है ही नहीं कुछ। मतलब जब तक कि कोई अपने को बोले या हमारे माँ बाप को बोले, अरे वाह आपका तो ये काफी अच्छा है, ये तो काफी होशियार है, तो आगे चलते चलते उम्र बढ़ते बढ़ते ये कॉन्फिडेंस लेवल फिर बिल्ड कर पाना सभी के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। और अमूमन मैं देखा है कि 65-70% का ये अनुभव मैंने देखा है पर्सनली। इससे तो अच्छा है कि हम लोग अपने अंदर वो एक चीज ढूंढे, और वो हम ही ढूंढ सकते हैं, थर्ड पर्सन नहीं ढूंढ सकता है। हमें ही ढूंढना है कि मेरे अंदर वो कौन सी चीज है जो सिर्फ मेरे अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। और बिलीव मी, ऐसा है। मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में आया, मुझे लगा कुछ भी, मैं निकम्मा ही हूं, कुछ है ही नहीं मतलब मेरे अंदर। आगे चलते 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 मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आता था। आई कुड हैव नेवर इमेजिन कि मैं कभी राइटर बन सकता हूं, 7500 कॉलम में लिख सकता हूं। बट मुझे अंदर में आया कि मैं ऐसे बड़ा अच्छा लिखता हूं। स्कूल में ऐसे कंपटीशन में हर बार फर्स्ट प्राइज, बाकी सब में खराब मार्क्स, ऐसे में सबसे अच्छे मार्क। तो मेरे को लगा मैं ये कर सकता हूं, आई एम ए गुड स्टोरी टेलर। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड होनिंग अप माई स्किल्स और मैंने लिखना शुरू किया। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है यदि आप भाग्यशाली है, कोई अच्छा मेंटोर मिल गया, तो ही और शी दे कैन हेल्प यू इन होनिंग अप योर स्किल्स। पर ढूंढना आपको पड़ेगा कि मेरे अंदर ये है, और ढूंढने के पश्चात आपको वो एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि कईयों के अंदर ये मैं देखता हूं, कई मुझे मिलने आते हैं, उसके अंदर है वो, बता नहीं पाते। घर में माँ बाप का डर, पीयर प्रेशर, तो दूसरे क्या सोचेंगे। जैसे हमारी बहन है डीजे, इट इज नॉट ए यूजुअल प्रोफेशन, बट आज इन्होंने जिनके भी सपोर्ट से ये परस्यू किया रहेगा। वरना आज समाज ने अपने मापदंड सब फिक्स किए, लड़का है तो उसको यही करने का, लड़की है तो उसको यही करने का। हाँ या ना? यस सर ना, बोलिए। सब फिक्स किया है, ये यही कर सकता है, ये ऐसे नहीं होता है। तो आपको सर्वप्रथम तो अपनी विशेषता खुद खोजनी है, उसके पश्चात एक्सप्रेस करनी है, एंड लास्टली यू मस्ट हैव दैट गट्स टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। प्रवाह के विरुद्ध स्विम करने का आपके अंदर ताकत चाहिए। मैं समझता हूं इन्होंने वो करके दिखाया, क्योंकि मैं मुंबई शहर से हूं, बहुत सारे डीजे है वहां पे, बट ऐसा बहुत रेयर है आज से 10 साल पहले जो एक लड़की बनी थी डीजे, उसके बाद धीरे 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 ये शुरू। तो ऐसा यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ, नो बडी इज गोइंग टू डू दिस जॉब फॉर यू, तो ये पार्ट पक्का कर लीजिए।
बहुत सुंदर। मैं अभी इसके एक और पहलू पर जाना चाहता हूं। एक बात यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जब कोई अच्छा करता है तो वह संसार की दुआएं प्राप्त जरूर करता है। मैं अर्चना जी से पूछना चाहूंगा, आप कोई अपने जीवन की ऐसी घड़ी बताइए जब आपको आपके आसपास वालों ने बहुत दुआएं दी। आपने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा दुआएं मिली, और थोड़ा उस समय का फ्लेवर, जरा उसका रसास्वादन हम सबके साथ कराइए।
करियर जब मैं पहले स्टार्ट की थी तो उधर मुझे उस टाइम मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ये सच है, क्योंकि थोड़ा लगता है ना मैं शायद कुछ कमी है मुझ में, ये शायद अच्छा है, वो अच्छा करता है, ये अच्छा करती है, हमेशा ऐसा हमारे मन में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन धीरे 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 कभी मन उदास हो जाता है, कभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर कभी कभी ऐसा लगता है नहीं छोड़ दूंगी ये लाइन। बहुत बार ऐसा हुआ कि नहीं और नहीं कर पाऊंगी मैं, ऐसा होता है, पर वो आगे बढ़ने के जो मनोबल अपने आप ही जागृत हो जाता है, धीरे धीरे भगवान के ऊपर विश्वास वो अपने आप के थोड़ा अंदर झांकने की जो इच्छा रहती है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं, मैं भी कुछ करके दिखाऊं, मैं इसकी तरह नहीं हो पाऊंगी, वो अच्छा करता है, वो भी अच्छा करती है, लेकिन मैं भी आगे बढ़ती जाऊंगी, उनसे भी आगे कुछ करके दिखाऊंगी। मुझे भी पता नहीं था मुझे इतना पॉपुलैरिटी मिलेगी। जब मैं, हमारे आर्टिस्ट लोग ऐसे होते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाता है फ्रंट टू फ्रंट, तो वही ही अवार्ड होता है हमारे लिए, वही अवार्ड हो जाता है। तो मैम ये जो कैरेक्टर आपने किए थे ना, हमको तो बस आपने रुला ही दिया, हमको इतना अच्छा लगता है आपका कैरेक्टर, इतना इतने रियल कैसे कर पाते हैं। तो ये सुनते 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 मेरे मन में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत हो गए। हाँ, तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मैं भी किसी से कम नहीं। तो आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ, आज 40 से ऊपर फिल्म कर चुकी हूँ और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, यानी कि पॉपुलैरिटी यानी मैं ये नहीं बोलती कि मुझे नहीं बहुत सारे ये प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं सामने ही, मेरे सामने ही बहुत ज्यादा कमेंट्स मुझे मिल जाती है, वही मुझे मेरा अंदर के कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और खुशी वही मेरा एक्चुअल अवार्ड में समझती हूँ। इसी तरह आप भी पीछे मत हटिए कभी भी, क्योंकि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, ये मन में पूरा बैठा लीजिए। आज मैं थोड़ा फेल हो गई, लेकिन मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं भी किसी से कम नहीं, क्योंकि मैं भगवान का संतान हूं। मुझमें भी अंदर में, मेरे अंदर में भी बहुत सारे क्वालिटीज है, उसको जागृत करना है। अपने आप थोड़ा सोचो, अपने बारे में सोचो, फिर आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और उसको निकालना चाहिए। थैंक यू।
सेम प्रश्न मैं खुशबू जी से पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी घड़ी थी जब आपको बहुत ज्यादा दुआएं लोगों की मिली, और वो किस कारण से मिली, थोड़ा सा उस समय का रसास्वादन कराइए।
जैसे कि आपने सवाल किया है कि ऐसी कौन सी घड़ी थी, उस घड़ी पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर मैं आऊं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि वो मोमेंट इसलिए पॉसिबल हो पाया, वो अचीवमेंट का, क्योंकि मुझे मेरे काम की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिला। आज सोशल मीडिया पर उस प्यार की वजह से ही 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, एंड 60 से ज़्यादा कंट्रीज में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एज एन एंकर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड डीजे। अब मैं उस मोमेंट पर आती हूँ जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी सारे लोगों की दुआएं मिली। वो मोमेंट था कोरोना काल के टाइम पर, जब हमारा कोरोना पेंडेमिक चल रहा था। उस वक्त जो भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आती थी, उन्हें मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी और उन्हें लाखों करोड़ों लोग शेयर करते थे, और उस वजह से उस टाइम पर जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था, उनको रोजगार मिले। सो एक तो वो बात है जो मुझे लगा कि मुझे लाखों लोगों की दुआएं मिली, और सबसे प्रोमिनेंट मोमेंट तब हुआ जब नागालैंड के अंदर डॉग किलिंग, अगर आपने सुना हो तो नागालैंड में डॉग किलिंग होती है, वहां पर डॉग्स को एज अ फूड खाया जाता है। सो ये बात मेरे दिल में मतलब बहुत खटकी उस टाइम पर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी करके इसे बैन करवाना है, और मैंने उसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारी स्टोरीज लिखी और उन्हें लाखों लोगों ने शेयर किया। और ये बात जब पीएम मोदी जी तक पहुंची तो नागालैंड में डॉग किलिंग्स पर बैन लगा, और यही मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ कि ये सब उन लोगों की दुआओं की वजह से पॉसिबल हो पाया जो मेरे फॉलोअर्स थे, जिन्होंने उसे शेयर किया और लाखों डॉग्स मरने से बच गए। सो यही मेरा सबसे खास पल रहा। थैंक यू। ओम शांति।
अभी हमारे पास 5-7 मिनट शेष हैं। मैं ऑडियंस में से इनवाइट करना चाहता हूं कि यदि आपको आज के हमारे पैनलिस्ट की प्रतिभाओं को देखते हुए आपके मन का कोई प्रश्न है जिसे कि हमारे माननीय पैनलिस्ट आंसर कर सकते हैं, तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन कम इन फ्रंट, प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हैं कोई आज की ऑडियंस से? हाँ, आइए ब्रदर, आगे आ जाइए। और मैं चाहूंगा जिनके भी मन में प्रश्न है वो प्लीज आगे आ जाएं, एक छोटा सा लाइन लगा लीजिए, आपके एक एक करके हम प्रश्न लेना चाहेंगे। यस सिस्टर।
नमस्ते। ओम शांति। सबके विचारों से बहुत प्रभावित हुई, हमेशा सीखने की इच्छा थी, आप सबने बहुत सिखाया। साथ ही साथ आज की जिंदगी को और आपके एक्सपीरियंस को लेके ये जानना चाहूंगी, तकलीफें आती है, प्रॉब्लम्स तो होती है, आप लोगों से भी सोचते हैं, सुनते हैं कि किस तरह से रिचार्ज हो रहे, तो आप में से कोई भी एक बता दीजिए कि आप अपने आप को रिचार्ज करने के लिए क्या करते हो कि कल के लिए आप तैयार हो, संघर्षों के लिए भी और खुशियों के लिए भी। धन्यवाद।
ओके, सो सिस्टर के सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी। सिस्टर ने पूछा कि रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स से आप जब जूझ रहे होते हो तब खुद अपने आप को कैसे रिचार्ज करते हो। सो मैं हमेशा मन में ये सोचती हूँ, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, मैं परमात्मा का, मैं ईश्वर की सबसे प्रिय संतान हूँ। जब मैं सबसे प्रिय संतान हूँ और वो मेरे पिता है, तो पिता तो हम अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, तो मेरे साथ तो कभी कोई कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो जब मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है तो मुझे तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी होगी। अगर ऐसा हम सब लोग अपने मन में सोच लें, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम गॉड्स फेवरेट, क्या आप लोगों की लाइफ अच्छी हो जाएगी? तालियां बजा दो, तालियों में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू।
हेलो, ओम शांति। मेरा नाम प्रणव है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरा स्पेशली सवाल है ये बीके निकुंज भाई और बीके रामकृष्ण भाई से, आप भी एक कॉलेज लाइफ से गुजरे हुए हैं, तो मेरा मेन सवाल है कि आप हेल्थी कंपटीशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मेनली मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ मैं एक, तो यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन होते हैं, तो हेल्थी कॉम्पिटिशन कैसे बिल्ड करें, क्योंकि अगर कोई आगे जा रहा है तो मन में बहुत ये होता है कि अरे क्यों आगे जा रहा है, फिर एक्सेप्टेंस, हारने का एक्सेप्टेंस जल्दी बिल्ट नहीं होता, कि फिर बार बार सवाल आता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, तो आपने कैसे अपने आपके कॉलेज लाइफ में आपने कैसे डीलअप किया इससे?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हेल्दी कॉम्पिटिशन तब है जब आपके इक्वल या आपसे भी ज्यादा एफिशिएंट कॉम्पिटिटर आपको मिल जाता है, तो आप अपने आप को लकी महसूस कर सकते हो। ओके, तब वो हेल्दी कंपटीशन है। क्यों? आपके जैसे या आपसे भी अच्छे लोगों के संग में रहते हो, उनके साथ वर्क करते हो, आपके एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आप उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हो, वो बहुत हेल्दी फीलिंग आता है। और दूसरी बात, कोई आपसे अच्छा परफॉर्म किया, आप जाके उसको कंग्रेचुलेट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, वो एक बहुत हेल्दी फीलिंग है। माना जिसके भी अच्छे क्वालिटीज को, आप स्पेशलिटी को, जो आपसे भी अच्छे हैं उनको जब आप देखते हो, उसको अप्रिशिएट कर पाते हो, आप उससे ऊपर चले जाते हो, ये एटीट्यूड है तो हेल्दी कंपटीशन।
मेरा और एक सवाल है सर, कि आप स्टेज फियर को कैसे ओवरकम करोगे? ये मोस्ट ऑफ द यूथ, मतलब जितने भी
थोड़ा आप ऊपर आके बताएंगे। हाँ जी, पूछिए।
मेरा मेन है कि स्टेज फियर है, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ में स्टेज फियर सबसे बड़ा एक फियर है, कि कैसे निकाल सकते हैं, या आपने कैसे अप्रोच किया इस पे?
अच्छा, आप नीचे से पूछ रहे थे, ऊपर से पूछे, कुछ फर्क है?
यहाँ पे नहीं लगा, पर वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे।
ठीक है बाबा, आप नीचे से पूछ रहे थे और ऊपर से पूछ रहे थे, कुछ फर्क है? फर्क नहीं है, इतना ही है स्टेज फियर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
थैंक यू।
यस ब्रदर, आई थिंक ऑडियंस इज अ लॉट मोर इंटरेस्टेड, बट सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हम सिर्फ आपके बाद एक प्रश्न और लेंगे। बाकियों के लिए अभी जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, यू विल गेट इमेंस अपॉर्चुनिटीज, आपको बहुत अच्छे फैसिलिटेटर्स मिलेंगे, तो इसलिए ओनली टू मोर क्वेश्चन। हाँ भले,
नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन श्री रामकृष्ण जी से हैं। पहला, आपने बोला था कि आपको कम्युनिस्टिक लाइफस्टाइल आइडियल लगा, तो उसके पीछे क्या रीजन था आपको कम्युनिस्टिक लाइफस्टाइल आइडियल लगने के पीछे?
देखिए, कम्युनिस्टिक लाइफस्टाइल इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि वहां स्टेट ओन्स एवरीथिंग, कोई व्यक्ति अकेला किसी का ओनर नहीं है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो मुझे वहां आइडियलिस्टिक लगा। मगर रियलिटी में कोई भी कंट्री, कम्युनिस्टिक कंट्री में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा, मगर स्पिरिचुअलिटी में उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा। क्यों? रीजन ये है कि स्पिरिचुअलिटी ये बताती है कि एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑल दी अदर थिंग्स आर फंडामेंटली क्रिएटेड बाय यू, बट रियलिटी में फंडामेंटल स्पिरिचुअलिस्टी में नहीं है। और भारत, एंशियंट भारत जो है, जो सनातन भारत है, वो उसमें आपको ये फिलॉसफी प्रैक्टिस में दिखती है। वे राजा भी सेवक ही मानता है अपने आप को, और सर्वस्व को, सारे क्षेत्र को या देश को या पृथ्वी को भगवान का ही मानता है। और राजा डिफाइन करता है कि ये मेरा अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल है, ये एक पोजीशन ऑफ रूल एंड कंट्रोल नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल। और साथ साथ हर एक की वो डिस्टिंक्शन या वो डिफरेंशिएशन नहीं रखता है, इक्वली हर एक के लिए रखा जाता है। दैट्स द रीजन रियल कम्युनिज्म इज इन स्पिरिचुअलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। आपने बोला कि बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिलने से पहले यू हैव टू बी सरेंडर। व्हाट इफ सम पर्सन सरेंडर टू द रॉन्ग फेथ और रॉन्ग कल्ट?
फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी कल्ट के लिए या किसी पर्सन के पास सरेंडर नहीं होना चाहिए। साधना में सरेंडर होना चाहिए, प्रैक्टिस में सरेंडर होना चाहिए, व्यक्ति के आगे सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कल्ट के लिए सरेंडरेंस नहीं। आप एक स्पिरिचुअल, एक साइंटिफिक रिसर्च में भी एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो और उसके ऊपर आप रिसर्च करते हो, उसको सरेंडर करके उसको टोटल डेडिकेशन के साथ रिसर्च करते हो, उसके बाद आप आइदर वो हाइपोथेसिस सही है या गलत है प्रूव करते हो। इसी प्रकार
आपको सरेंडर होने से पहले रिसर्च करना होगा?
नहीं, आप कोई हाइपोथेसिस के आगे सरेंडर होना पड़ेगा ना।
Yes, इन्वेस्टिगेट करने, व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इफ दैट हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, दैट फेथ?
देखिए, इन्वेस्टिगेटिव हाइपोथेसिस करोगे, हाइपोथेसिस के ऊपर आप वर्क करोगे, फिर उसके बाद रिजल्ट्स देखोगे, आपको समझ में आएगा कि वो हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है या डिसप्रूव हो रहा है। अगर डिसप्रूव हो रहा है तो फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा उसे।
थैंक यू सर।
हेलो, ओम शांति। मेरा नाम सोनाली चौहान है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं आज ये क्वेश्चन करना चाहूँगी। पहले मैं बता देती हूँ, मैंने रेडियो में एक साल काम किया, अभी मैं मीडिया में हूँ। जब मैं रेडियो में थी तब भी मुझे लोग डिमोटिवेट बहुत करते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, गिव अप नहीं करना, सीखना है, जितना सीख सकती है सीख। तो फिर मैंने मीडिया ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी भी लोग डिमोटिवेट करते हैं। कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस भी कम है अभी, तो मैं चाहती हूँ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो मैं कैसे बढ़ाऊँ? साथ ही लोग डिमोटिवेट करते हैं, तो उस टाइम पे खुद को मोटिवेट कैसे करूँ?
सोनाली, वैसे मैंने भी रेडियो में काफी साल वर्क किया है। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लोग क्या कहते हैं उस बात को आपको नहीं सुनना है। आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहती है, सिर्फ और सिर्फ उसी बात को सुनना और अमल करना है। सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के लिए आपको कुछ समय साइलेंस में रहना चाहिए, जब आप सिर्फ अपने अंदर के मन की आवाज को सुन सके। वो जो आपकी आंतरिक आवाज है, वो जो आपको कह रही है ना, वही सच है, और उसी को सच मानिए। आउटर वर्ल्ड की आवाज की तरफ ध्यान मत दीजिए। थैंक यू।
थैंक यू मैम।
ओम शांति। मैं सातारा से आया हूँ और मेरा YouTube चैनल है पॉडकास्टिंग का, और मेरा सवाल आपसे खुशबू जी, मैं पूछना चाहता था कि हम ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे कई लोग होते हैं जिनको कुछ फायदा दिखता है हमारे साथ, और वो काम करने के लिए आ जाते हैं और हम मना नहीं कर पाते, तो ऐसे समय बाउंड्रीज कैसी सेट करनी चाहिए?
यू हैव टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ सेइंग नो।
यस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग फॉर।
ओके, तो ना कैसे कहें, आपको ये सीखना है, राइट? ओके, मैं अपने प्रोफेशन की बात करती हूँ यहाँ पर। आपका और मेरा प्रोफेशन काफी रिलेटेड है, क्योंकि वो मास मीडिया से ही जुड़ा है। सो कई बार लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं, और वो आपसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, बट आप उन्हें बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं।
क्योंकि वो, मेरा मॉरल नहीं है कि वो उस तरीके का काम मैं करूँ, लेकिन उनको लगता है शायद कि मैं करूँगा तो उनको बेनिफिट होगा।
ओके, देखिए, इसको टैकल करने के दो तरीके हैं। या तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप ये सोचें कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो
तो ऊपर वाला वो सुप्रीम पावर आपका भला करेगी, ठीक है?
Yes.
जब हम किसी के लिए कुछ भी काइंड एफर्ट्स करते हैं, देयर इज ऑलवेज दैट सुप्रीम पावर दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन वन वे और दी अदर। ये अगर आपने दिमाग में ये बिठा लिया तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि सामने वाला हमसे बेनिफिट लेना चाह रहा है।
ओके।
सेकंड, यू वांट टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ सेइंग नो। सो उसके लिए मैं जो करती हूँ वो ये होता है कि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि उसके मन में क्या थॉट चल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो आप एग्जामिन कर सकते हैं उसकी वाइब्रेशन से। अमूमन आपने भी देखा होगा कि कभी आपसे कोई व्यक्ति मिलने आता है तो आपको दूर से ही उसको देखकर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी है। तो जब आपको ऐसा लगे तो यू कैन पोलाइटली से नो, और यू कैन मेक अ लिटिल बेटर एक्सक्यूज दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस, यू आर स्लाइटली बिजी समवेयर, बट दैट ऑल डिपेंड्स इफ यू फील नेगेटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम दैट पर्सन। लेकिन अगर जो सामने पर्सन है उसका माइंडसेट पॉजिटिव है और वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहा है तो मेरे ख्याल से उसका काम करने में कोई बुराई नहीं है, आप उसका काम कर सकते हैं।
थैंक यू।
थैंक यू सो मच। तो अभी हमारा बुद्धि रूपी कलश बहुत प्रकार के अनुभवों से, बहुत प्रकार के ज्ञान रत्नों से भरपूर है। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे सभी पैनलिस्ट का जो कि देश के विभिन्न विभिन्न एरिया से हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं और आज के टॉक शो को आपने चार चांद लगाए, बहुत बहुत आप सबका आभार। और अभी हम लोग अग्रसर होंगे वर्कशॉप के सेशन की ओर, जहां पर कि हम लोग सभी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होंगे। तो अभी एक मिनट साइलेंस के साथ हम इस सत्र की समाप्ति करते हैं। ओम शांति।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या